ये सीखना है। जो भी विरक्त बाबा जी हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, घूमते हैं तो कहीं कहीं स्त्रियां प्रणाम करने के लिए आती हैं, तो पहले से ही घोषणा रहनी चाहिए कि भाई कोई युवती स्त्री चरण छूकर प्रणाम नहीं कर सकती। हमने सुना है कि त्रिदंडी स्वामी नहीं कभी स्पर्श करने देते हैं। हाँ, ये सन्यासी का धर्म। काठ किसी स्त्री हुई पायल से फिर हाथ से और जीवित ज्योति का स्पर्श कोई कैसे करेगा? आजकल तो सन्यासी लोग भी प्रणाम करने वाली स्त्रियों की पीठ थपथपाया करते हैं। भाववाड़ी समाचार चलता है, समाचार पूछते गेरुआ कपड़ा पहने। ये शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण मम, देखना चाहिए क्या हो जाएगा अगर स्पर्श कर देगा तो पैर से भी। तो स्पर्शम करी व बद्धेता, अगर स्पर्श करेगा तो जैसे हाथी बांधा जाता है गर्त में गिरा करके, वैसे ये भी बांधा जाएगा, मारा जाएगा। करी व बद्धेता, करी कर, कर का अर्थ सूढ़ है, और करी माने सूढ़ वाला, कर वाला। ये सूढ़ वाला बांधा जाता है, इतना बलवान जीव, उस तरह से सन्यासी एक जगह बंध जाएगा, गिर जाएगा, हो सकता है जान से भी मारा जाए। स्पर्शम करी व बद्धेत करिण्या अंग संगत, जैसे करिणी के साथ अंग संग के कारण, हाथनी का संग करने के कारण हाथी मारा जाता है, गिरता है उस गड्ढे में जिस गड्ढे का मैं वर्णन किया, उतना बलवान जीव गड्ढे में गिरा करके कई दिन उपवास करा करके कमजोर बना करके और तब लाया जाता है, और एक साधारण महावत, एक साधारण आदमी उसके सिर पर अंकुश मार मार करके अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। हाथी में कितना बल है, वो आदमी कितना कमजोर है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार उसको चलाता है। ऐसे ही कोई सन्यासी किसी स्त्री के वश में अगर हुआ, गिरा, तो फिर वो उस पर अंकुश चलेगा। नारी दिवस नर सकल गोसाई ना चाहिए नट मर कट की नाई, उसे नाचना पड़ेगा स्त्री के अनुसार, और इसके साथ ही साथ वो स्त्री वाले उसको जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे। इसीलिए भिक्षुकों को, मधुकरी करने वालों को, सन्यासियों को चाहिए कि वे कभी भी स्त्री का स्पर्श न करें, और स्पर्श एक उपलक्षण है, वे यथाशक्ति दर्शन न करें, उनके साथ बातचीत न करें, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा है कि वे गिर जाए। नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कहिचिन् मृत्युमात्मनः बलाधिकैः सहान्यतः गजैरन्ये गजो जथा। ये तो सन्यासी को शिक्षा दी गई, अब किसी भी व्यक्ति को शिक्षा दे रहे। नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कहिचिन् मृत्युमात्मनः, कोई भी प्राज्ञ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको जानना चाहिए कि स्त्री जो है वह अपनी मृत्यु है। विशेष करके यहाँ पर स्त्री के लिए बात कही गई है, और अपनी स्त्री के साथ भी कुछ प्रतिशत की बात लागू होगी, लेकिन पर स्त्री के लिए बात कही जा रही है। जो पर स्त्री है, दूसरे की स्त्री है, उसको अपनी मृत्यु के रूप में देखना चाहिए बुद्धिमान पुरुष को, और ऐसी स्त्री का कभी संग नहीं करना चाहिए। नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कहिचिन् मृत्युमात्मनः, कहिचिन् किसी भी स्थिति में, कितनी भी काम वासना हो, कोई भी चांस हो उसका संग का, ये भी जानता है कि कोई नहीं जानेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में उसे दूसरे की स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बलाधिक सहन्य पर, इससे अधिक बल वाला कोई आदमी होगा तो वह उसका वध कर देगा, और वह उस स्त्री को भोगना चाहेगा, और वह स्त्री ही मरवा देगी पूर्व पुरुष को। ऐसा संसार में सुना गया है, तो अपनी स्त्री भी जार पुरुषों को बुला करके अपने पति को मरवाती है। तो स्त्रियों को भोगने की सहज प्रवृत्ति है पुरुषों में, अतः किसी को अगर कोई भोगना चाहे, किसी स्त्री का संग करना चाहे तो मारा जाएगा। बलाधिकई गजई, जैसे कोई हाथी किसी हाथी का संग करना चाहता है तो दूसरे उससे बलवान हाथी उसको मार देते हैं, जान से मार देते हैं। इधर भी हम लोग सार भैसा देखते हैं, संग करने के लिए आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, कुत्ता भी बहुत लड़ाई करते हैं, थोड़े से संग के लिए बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। तो इस तरह से अगर यह प्रवृत्ति ही ना प्राज्ञ अगर बुद्धिमान है तो समझेगा कि अरे ये तुच्छ सुख है, स्त्री के साथ में कोई सुख नहीं है, संग में सुख नहीं है और उल्टे बल्कि अपनी मृत्यु है, इस तरह से उसे बचना चाहिए। प्राज्ञ स्त्रियम न अधिगच्छे, नहीं जाए, नहीं तो कृष्ण भावना आदि से तो गिरेगा ही, जान से भी हाथ धो डालेगा, मृत्यु स्वरूप। हाथी को मरते हुए बलवान हाथियों के द्वारा देखा गया है, इतना युद्ध करते हैं हाथी आपस में कि वे मार देते हैं, कई हाथी मिलकर एक हाथी को मार देते हैं गिराकर। तो एक से एक बलवान आदमी है इस जगत में, एक से एक धनवान आदमी है, इसीलिए किसी पर स्त्री के संग की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर परिस्थिति इस तरह की है तो आज मान लीजिए आपको लुब्ध कर रही है तो कल उसे दूसरा सुविधा मिलेगी तो दूसरों का कष्ट करेगी, तो हो जाएगा कल झगड़ा, इसके बाद मरण निश्चित है। स्त्रियों के लिए कई लोग मरे हैं और परिस्थिति के चलते खास करके खास सीता के कारण कई लाख लोग लंका में मारे गए, जो कि रावण अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानता था लेकिन परिस्त्री के साथ वो ये चेष्टा करना चाहा, मारा गया। नहीं तो यह कार्य यदि रावण नहीं किया होता तो उसको मारना बहुत कठिन था, भगवान भी माफ कर दिया लेकिन मारा गया। बहुत ऐसा इतिहास है, बहुत लोग मारे जाते हैं। यह हाथी से शिक्षा मिलती है और अब मधुरा से शिक्षा लेकर के हम फिर विराम देते हैं। न देयम् नोपभोग्यम् च लुब्धैर्जद्दुःख संचितम् भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहे वार्थवि मधु। स्व उद्यमं विना त्याग भोग विहीनो धन संचय परगामी भवति इत्यत्र मधुहा गुरुरित्या। अब सबके लिए शिक्षा है, केवल सन्यासी के लिए नहीं। कोई व्यक्ति अगर ऐसे धन का संचय करता है जो धन न तो दान दिया और न भोगा, तो दान और भोग मतलब घर द्वार नहीं बनाया और भी खाया पिया बढ़िया से नहीं, घुमा फिरा नहीं, तीर्थादि नहीं किया, इसको भोगहीन धन कहते। कुछ लोग धन केवल इकट्ठा करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत ऐसे कृपण होते हैं संसार में, धन इकट्ठा करते हैं, खाते भी अच्छे से नहीं है, पहनते भी नहीं है, दान देने की बात तो और भी है। तो दान देना, भगवान की सेवा में दे देना, साधु ब्राह्मण को देना, गरीब को देना, ये तो उत्तम गति है दान की। ऐसा दान, ऐसा धन परलोक में कई गुना होकर के मिलता है, इसको दान कहते हैं। लेकिन धन का दान भी नहीं किया, अच्छा चलो सेकेंड जो गति है भोग, घर द्वार बनाना, स्वजन को देना, खाना पीना घूमना, ये भी नहीं किया, न दान किया न भोग किया। तो ऐसे धन का संचय करने वाला, ऐसा धन जो संचय करता है तो वह धन एक दिन दूसरे के हाथ में जाता है, बटोरा हुआ धन दूसरा भोगता है। इस विषय में मधुहा गुरु है, मधुहा छिनकती थी, मधु को जो छीन ले हरण कर ले उसको मधु कहते हैं। मधु कमाती है मधुमक्खियां, कहां कहां से थोड़ा थोड़ा कितना कष्ट करके उपवास करके कमाती है, मधु इकट्ठा करती है, उस समय वो कुछ खाती नहीं है। कितना ईमानदार है मधुमक्खियां, ढो ढो करके ला करके जमा करती है और इस आशा से कि एक दिन हम लोग खाएंगे, संचय करती है। लेकिन उसको मधुहा ले लेता है, मधुहा मधु छुड़ाने वाला। जितने लोग मधु छुड़ाते हैं उसमें से मधु लगाने वाले थोड़े कोई हैं, एक भी अभी मधु लगाया नहीं होगा, लेकिन छुड़ाने में तो हम सोचते हैं कि पुराने आदमियों में कोई ऐसा नहीं होगा जो मधु ना छुड़ाया। कितने लोग मधु छुड़ाए हैं या मधु छुड़ाते हुए देखे हैं? हाथ उठाई। मधु छुड़ाते समय कितने लोग देखे हैं? काफी लोग देखे। तो दूसरे का धन लिए, दूसरा बेचारा मेहनत कर करके रखा है कि हम इसको पिएंगे, खाएंगे, तब तक दूसरा छुड़ा कर ले। यही गति होती है संचय करने वालों की। जो धन मिले उसे या तो दान दे देना चाहिए और नहीं तो खूब भोगना चाहिए। खाना पीना ये उसमें मतलब उसको लगाना चाहिए, नहीं तो परगामी भवती। परगामी मतलब दूसरे के पास धन चला जाएगा। नहीं, भोगेगा तब तो कुछ ठीक है, तो मरेगा, जीवित होगा, खाता मरेगा क्या? नहीं, उत्तम गति दान है। भागवत सत्ता हो रहा है, खुद खिलाओ पिलाओ, दान है। अगर ऐसा नहीं कर सका तो चलो तुम ही खाओ। और वो भी नहीं किया, बटोरा हो तब तो दूसरे लोग नहीं जाएंगे, चाहे दमाद ले जाएगा, चाहे सरकार ले जाएगी, चाहे चोर ले जाएगी। हाँ, दमाद ले जाएगा। और तो दमाद मान लीजिए जिसके पास केवल लड़की है, लड़का नहीं हुआ है, तो दमाद लोग आज से ही जोड़ते रहते हैं, कितना पैसा कहाँ जमा किया है, कितना खेत है, खेत में बेचने पावे, कहीं देने न पावे, वो तो मधुआ लगे हुए। कोई भी सबके पास मधुआ है। अगर कोई गुरु है, पैसा रखा है, तो शिष्य उसमें से कुछ शिष्य ऐसे हैं जो लगे हुए हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जान मार कर ले लेते हैं गुरु का। एक नंद गांव की घटना आपको बता रहा हूँ। गौड़ीय मठ है सनातन भजन कुटी के पास, वहाँ एक शिष्य रहता था, एक गुरु जी रहते थे। गुरु जी बहुत वृद्ध हो गए थे, गौड़ीय सर बाबा जी। तो एक दिन रात में हल्ला किया शिष्य कि हमारे गुरु जी को डाकू मार दिए, ये किए वो किए, और कुछ बक्सा उक्सा ले जाकर बाहर फेंक दिया, गर्व कर दिया, वो कर दिया। तो बक्सा फेंका भर था, तोड़ा नहीं था, उसमें जो पैसा था उसी में था, उजार गया था, इतने जमा किए हैं और लिख करके गए थे कि हम मरेंगे तो इसके इसको पैसा दे देना चाहिए। तो सोचा क्यों नहीं, जितना जल्दी मर जाए हमारा पैसा हो जाए उसी से। तो उनको काटा रात में, और इसके बाद हल्ला किया, कुछ लोग जूटे, फिर पुलिस आई, लगे देखने, वो हल्ला क्या रो रहा था बनावटी, हमारे गुरु जी को मार दिए, डाकू चोर मार दिए, कर दी। लेकिन उसके वस्त्र पर कुछ छींटा ऐसा लगा था कि वो फब्बारा का छींटा था। तो पुलिस ने पूछा कि तुम पर कैसे खून लगा, तो कहा लोग मार रहे थे तो मैं बचा रहा था, ये कर रहा था, कर रहा था। वो लोग तुमको लोग नहीं मारे? अगर नहीं, हमको नहीं मारे, ऐसे मेरे गुरु जी को मार दिए। तब तक पुलिस उसी को हथकड़ी दिया, वो लोग समझ गए, बक्सा भी नहीं टूटा था, बक्सा कोई भारी नहीं था, कोई ले जाएगा तो रोड पर क्यों फेंकेगा, वो सारी बात समझ गए। इसको लगे मारने, सवेरे ही मैं पहुंचा था वहां जब वो पकड़ा गया, बहुत मारे, एक एक बात बक दिया। तो बताइए, जो गुरु जी उसको रखे थे शिष्य बना करके, और ये भी लिख दिए थे कि इसके बाद तुम्हारा धन होगा, लेकिन वो धन रखा क्यों? प्रश्न तो ये है, नंदलाल जी तो ये सोचे होंगे क्यों धन रखा, क्यों नहीं मंदिर में दे दिया? तो चेला उसको मार दिया। इस मधुरा का है, धन कमाने वाले कमा रहे हैं, संचय कर रहे हैं, लेकिन धन ले लेने वाले भी देखते रहते हैं, कहाँ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इसमें लिखा गया है कि न देयम, जो धन दे नहीं है, जिसको दान में नहीं दिया जाता है, और न उपभोग्यम, और न तो भोग किया गया, लोभियों के द्वारा जो दुख संचित, बड़े दुख से संचित किया जाता है, वह धन दूसरे के पास चला जाता है। भूखते तदपि तत्चन्य, उसको दूसरा भोगता है, और दूसरा ले जाकर के संचय करे तो उसको मारकर तीसरा भोगता है, और वो अभी संचय करे तो चौथा भोगता है। इसी तरह मार मार करके बस संचय चलता रहता है, तो धन कई लोगों को मरवा देता है। दान और भोग से विहीन धन कई लोगों की जान लेता है। और खा पी करके भी खत्म कर दिया गया तब मधुआ क्या करेगा? या दान दे करके खत्म कर दिया जाए तब मधुआ नहीं लगते। तो मधुआ युवा अर्थ भी मधु असली बात। और कोई पूछे कि भाई कैसे पता लग जाता है मधु छुड़ाने वालों को, कैसे पता लग जाए? कोई कहे कि हम ठीक है धन का दान नहीं करेंगे, भोगे भी नहीं, हम छिपा करके रखेंगे, कैसे कोई ले लेगा? तो इस पर भगवान कहते हैं कि अर्थ भी मधु छुड़ाने वाला जो चोर है चाहे धन लेने वाला है वो पूरा जानता है, अर्थ रहता वो जानता है, लक्षण से पता लगा लेता है। लक्षण क्या है? लिंग गई लक्षण से पता लगा लेता है। क्या लक्षण होता है कि जब कोई आदमी कहीं धन रखता है तो उस स्थान को बड़ा सुरक्षित रखता है, और कभी कभी बच्चों से चाहे किसी से भी कह देता है उन्हें मत जा, उन्हें ठीक नहीं है, तो उसे तो क्यों मना कर रहा है? उधर मत जा, उधर कहीं कोने में रखा हुआ है बक्सा में, चाहे वो छोड़ दीजिए उसमें कुछ नहीं है। तो उसे तो कुछ नहीं मतलब, ओ जरूर कुछ है, इस तरह से पता लगता है। और जो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर इधर उधर जो चाई रहते हैं चोर रहते हैं, तो ये लोग लोगों को देखते रहते, जो बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते हैं खुद जीत जानते हैं कि मतलब इनके पास कुछ मधु हो सकता है, तो पता लगाते हैं, देखते रहते हैं। और वो आदमी कभी कभी हाथ रखता है पैकेट पर, कभी ऐसे कभी कुछ, और अभी पेशाब करके आया है तब तक तुरंत बाथरूम जाता है, वो समझ जाते हैं कि वो पेशाब करने नहीं गया है, इसके पास कुछ है, उसको देखने गिनने संभालने के लिए गया है। तो इस तरह से मिला करके जैसे तैसे वो मधुवेता न अर्थवित, तो वो जानते हैं धन को, जैसे मधु छुड़ाने वाला मधुमक्खियों के व्यवहार से जान जाता है। कहीं पहाड़ की गुफा है या पेड़ है खोड़हर है तो उसमें मधुमक्खियों का आना जाना लगा रहता है, देखता है तो यहाँ मधुमक्खियां आ रही है जा रही है, ये मधु लग चुका है। अगर मधुमक्खियां वहां से सीधे निकले और चली जाए दूसरी जगह तब जान जाता है कि यहाँ अभी लगा हुआ कम है मधु, अभी इकट्ठा कर रही है। और जब इकट्ठा हो जाता है मधु तो मधुमक्खियां जाती नहीं है, वही मर्रा मर्रा करके रहती है, तो समझ लेता है अब पक्का मधुकोश लग गया। तो कुछ मधुआ तो ये भी देखते रहते हैं कि अब बैंक में कितना बड़ा छाता लगा हुआ है, तो रजिस्टर भी देखते हैं। वहाँ बड़े चलाक होते हैं चोर लोग, खुद ही खाता खोल देंगे उसमें, और देखते रहते हैं अकाउंट नंबर और सब, और तब कोई न कोई उपाय करते हैं कि अब कैसे मधु छुड़ाया जाए। मधु छुड़ाने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि मधुमक्खियां मारने लगती है, काटती है दौड़ने के लिए, तो वो पूरा पूरा उपाय जान जाता है कि इस तरह से इसको छुड़ाना है। अच्छा मान लीजिए केवल दमाद है, किसी आदमी को लड़का नहीं है केवल दमाद है, तो दमाद भी अब पूरा पूरा पैतरा लेने लगता है मधु छुड़ाने के लिए, और ससुर के जीवित रहते हुए उस सास और ससुर भले भीख मांगे आज से, लेकिन उसको अपने मधु से काम है। और हम लोगों की दशा संसार में ऐसी है वास्तव में, मधुमक्खी जैसे संचय करना संचय करना संचय करना। तो खैर कोई बात नहीं, गृहस्थ कुछ कर सकता है लेकिन उसको सजग रहना चाहिए। सन्यासी आदि को तो कोई प्रश्न ही नहीं, जब रोटी एक टाइम के बाद नहीं रखना है तो मधु कहां से रखे? मधु माने मनी धानी, मधु माने पैसा है। पैसा ही मधु है। कई बार तो ऐसा हो सकता है वास्तव में, आप किसी आदमी को मधु खाने के लिए दीजिए तो कह देगा नहीं हमको 2-4 रुपया दे दीजिए हमें बैठ, वो उससे ज्यादा स्वीट है, पैसा मधु से ज्यादा प्रिय है, प्राण से भी अधिक प्रिय है। मधु तो छोड़ दीजिए, आदमी प्राण दे देता है लेकिन धन नहीं देता है, मर जाता है। कितने लोग धन बचाने में मर जाते हैं, और कल तो देखा गया धन बच गया लेकिन वे मर गए। और ज्यादातर तो यही होता है धन भी गया वो भी गया, इसलिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। खाना चाहिए, कपड़ा लत्ता पहनना या गृह मकान बनाना जो है लड़कों का विवाह शादी आदि करके पूरा हो जाए, अथवा दान में चला जाए। एक तो ये शिक्षा है और दूसरी शिक्षा है सुदुखोपार्जित आशा साना गृह आशीष मधुरे वाग्रतो भूते जतिर्वै गृह मेधिना। श्रीधर स्वामी उस श्लोक की टीका में लिखे ननु सुगुप्तम धनम कथम अन्योज्ञास्यति हरिष्यति ये तत्रा अर्थवित लिंगै लिंगै अर्थम उपायम तद उपायम च वेति इति अर्थवित जथा मधुवा तरु कोटरादि गतम मधु वेति मधुमक्षिका नाम गमनो गमने न मधुमक्खियों के गमन आगमन तो जान जाता है कि यहाँ पर है। तो स्व उद्यमम बिना भी भोग संभवती इति अत्रापि सैव गुरु वृत्ति है। एक दूसरी शिक्षा है सन्यासियों को कि उद्यम के बिना भी बिना प्रयास के भी बिना काम किए भी धन मिल जाता है भोग मिल जाता है। जैसे मधुआ को तो मधुमक्खियां इतना दुख सहसा करके मेहनत करके मधु इकट्ठा करती हैं और उसको छुड़ा लेता है मधुआ। इसी तरह से कुछ लोग बहुत दुकान करके खेती करके व्यापार करके या नौकरी करके बहुत दुख से धन इकट्ठा करते हैं। क्या आशा रखते हैं? आशा सानम गृहाशीषम कि अपने घर गृहस्थी में सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे बहुत बहुत आशा रखकर धन कमाते हैं। लेकिन उस धन को खाता है पहले सन्यासी। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन आप देखे हैं गांव घर में सब जगह कोई कितना भी धन कमावे लेकिन उसको पहले भोग लगाता है सन्यासी ब्राह्मण जति ये सब। जैसे मान लीजिए आप गल्ला इकट्ठा किए तो तक उसको कहते हैं क्या कहते हैं अंगऊ। अंगऊ का मतलब होता है अग्रभूख आगे पहले काढ़िए। बहुत मेहनत करके कमाए लेकिन सबसे पहले खाएगा कोई दूसरा चाहे पुरोहित जी खावे चाहे साधु चाहे कोई नियम भी है पहले खाता। और गृहस्थों के यहाँ नियम बनाया गया है कि जब भोजन बने तो उनको पता लगाना चाहिए कि हमारे गांव में कोई जति सन्यासी या ब्रह्मचारी तो नहीं है तो पकाए हुए अन्न से उसको पहले तृप्त करके तब खाना चाहिए। अगर पहले खा लिया गृहस्थ तो उसके लिए देखिए क्या दंड है जतिश च ब्रह्मचारी च पक्कान स्वामी न उभव तयोर अन्नम अदत्वा चु भुक्त्वा चंद्रायणम चरे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये पके हुए अन्न के पहला स्वामी है। इनको बिना दिए जो गृहस्थ खा लेता है उसको चंद्रायण व्रत करना चाहिए। चंद्रायण व्रत का मतलब होता है चंद्रमा जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे उसको आहार कम कर देना चाहिए। रोज दंड होता है पाप लग गया उस पर कि सन्यासी ब्रह्मचारी कमाते नहीं है समाज के सबसे उपयोगी जीव ये है प्रचार करते हैं भक्ति करते हैं तो कुछ कमाए हो तो सबसे पहले उनको खिलाना चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ सन्यासी को ब्रह्मचारी को बिना खिलाए खा लेता है उसको बहुत पाप लगता है। ऐसे वैदिक मर्यादा से लोक मर्यादा से भी सन्यासी को पहले भोजन मिल जाएगा इसीलिए काम नहीं करना चाहिए केवल भक्ति करनी चाहिए। मधुहा युवा अग्रतो भूखते और देखा भी गया है कि साधु अधुआ पहले ही खा लेते हैं। हमने देखा है कई बार साधुओं को इस तरह से सम्मानित करते हुए अपने खास घर नहीं देखा कि सब संबंधी आए हैं विवाह है और है सब है लेकिन साधुओं को पहले भोजन वो भी शुद्ध घी का और बाकी लोग डालडा पीछे चलता है। तो भगवान की व्यवस्था है भोजन मिल जाता है इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए भजन में लगे रहना चाहिए। ये भजन के कारण लोग आदर करते हैं साधु होने के कारण आदर करते हैं तो आगे वे संधि को खिलाएंगे कि साधु को खिलाएंगे बताइए। दुल्हा बनकर के एक आदमी आया है, समधी आया है, लेकिन वो बेचारे पीछे खाते हैं। वो भी जानता है कि ठीक है साधु महात्मा मिलता है ना, भजन करने पर मिलता है, इसलिए साधु को चिंता नहीं करना चाहिए। तो यह शिक्षा मधुरा से लेनी चाहिए। इकट्ठा कौन किया और पहले ही भोग लगा दिया, वो मधुरा मुसहत है, कोई मधु छुड़ाने वाला खा गया तो मिलेगा भगवान की दया से। तो दो दो शिक्षा मिली कि धन का दान कर देना चाहिए अथवा उसे भोगना चाहिए, बहुत संचय नहीं करना चाहिए नहीं तो दुख होता है। और मधुरा के एक आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भक्त है, भगवान के भक्त है, त्यागी है, उनको पहले ही मिल जाता है भोजन, को चिंता नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्राम्य गीतम श्रृणुयात् जतिर्वनचरः क्वचित् शिक्षेत हरिणात् बद्धात् मृगयोर्गीतम् मोहितात्। नृत्यवादित्र गीतानि जुषन् ग्राम्याणि जोषितान्। आसाम क्रीडन को वश्यः ऋष्य श्रृंगो मृगीषुतः। जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहितः। मृत्युं ऋक्षत सद्बुद्धिः मीनस्तु बडिशैर्यथा। इन्द्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषिणः। वर्जयित्वा तु रसनां सन्निरन्नस्य वर्धते। आवर्जितेन्द्रियो न स्यात् जितान्येन्द्रियः पुमान्। न जयेद् रसनं जावत् जितं सर्वं जिते रसे। पिंगला नाम विश्यासीत् विदेह नगरे पुरा। तस्या मे शिक्षितं किञ्चित् निबोध नृपनन्दन। सा स्वर्णेकदा कान्तं संकेता उपनिष्यति। अभूत काले बहिर्द्वारी बिभ्रति रूपमुत्तमम्। मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ। तान् शुल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेमेऽर्थ कानुका। आगते स्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी। अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि माम् पश्यति भूरिदः। एवं दुराशया ध्वस्ता निद्रा द्वार्यवलम्बति। निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथं समुपद्यत। तस्या वित्ताशया शुष्या वक्राया दीनचेतसः। निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ता हेतुः सुखावहः। तस्या निर्वीणचित्ताय गीतं शृणुजथा मम। निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा तस्य निर्वीणचित्ताय गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशा पाशानां पुरुषस्य यथा यसिः नह्यंगा जात निर्वेदो देहबंधं जिहासति जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममतामृत पिंगलो वाचा अहो मे मोह विततिं पश्यता विजितात्मनः या कांता दशतः कामम् कामये जेन बालिशा संतं समीपे रमणं रतिप्रदं गीता प्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःख भयादिशोका मोह प्रदं तुच्छ महां भजज्ञा अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत वृत्त्याति विगर्ह्य वार्तया त्रैणान्न राज्या अर्थ त्रिशोनुशोच्यात् त्रैणात्म राज्यार्थ त्रिशोनुशोच्यात् कृतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति जदस्तिभिर्निर्मित वंश वंश्या स्थूणं त्वचारो मनखैपि नद्धां क्षरं नवद्वारमगारमेतत् दीनमूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या विदेहानां पुरे यस्मिन् अहमेकैव मूढधिः यान्यम् इच्छन्त सत्यस्मात् आत्मदात् काममच्युतात् सुहृत् प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणां तं विक्रियात्मनैवाहम् रमेनेन यथा रमा कियत् प्रियं ते व्यभजन् कामाये कामदानरः आद्यन्तवन्तो भार्यायाः देवा वा कालविद्रुतः नूनं मे भगवान् प्रीतः विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदोऽयं दुराशाया जन्मे जातः सुखावहः मैवं स्युर्मन्दभाग्यायः क्लेशा निर्वेदहेतवः येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः सममृच्छति तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गतः त्यक्त्वा दुराशः शरणम् व्रजामि तमधीश्वराम् संतुष्टा श्रद्दधत्येता यथा लाभेन जीवति विहरामं नैवाहम्
आत्मना रमणेन
वै
संसारकूपे
पतितां
विषयैर्मुषितक्षणां ग्रस्तं कालाहिनात्मानम् पुण्यस्त्रातुमधीश्वरः आत्मैव ह्यात्मनो गोक्ता निर्विद्येत यथाखिला निर्विद्येत यथा जदाखिला अप्रमत्तैदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत् ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसितमतिः दुराशां कान्ततर्षजा चित्तोपशममास्थाय सज्जाम् उपविवेशसा आशाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्यकान्ताशाम् सुखं सुस्वापपिङ्गला ग्राम्यगीता ग्राम्य गीत स्त्री पुरुष को परस्पर प्रिय लगने वाला गीत ना श्रुयात सुमे कभी ना सुमे जति सन्यासी वंचर वंचारी वनप्रस्थ क्वचित कभी भी शिक्षेता यह सीखना चाहिए हरिणात हरिण से बद्धात जो बांधा जाता है मृगयो हो वहेलिये के गीत मोहिता गीत से मोहित हरिणात शिक्षितम आह ग्राम्येति अब हरिण से जो शिक्षा मिलती है उसको भगवान बता रहे हैं क्वचिदपि जति ही वनचरः ग्राम्य गीतम् न श्रुणुयात् सन्यासी और वानप्रस्थी को चाहिए कि किसी भी स्थिति में ग्राम्य गीत न सुने ग्राम्य गीत का अर्थ होता है ग्राम्याणाम् विषयणाम् गीतम् दंपति प्रत्यादि वर्णन रूपम् जिन गीतों में स्त्री को प्रसन्न करने वाली बात कही जा रही हो या स्त्री के द्वारा पुरुष की बात पुरुष को प्रसन्न करने वाली बात कही जा रही है उसको ग्राम्य गीत कहते हैं ग्राम्य मतलब विषय और विशेष करके विषय में स्त्री पुरुषों का जो आपस में आकर्षण है एक दूसरे के प्रति जो मोह है अहम ममेत्य है उसको ग्राम्य कहते हैं तो इस संसार में बहुत से ग्राम्य गीत है जिनको सुनने के बाद पुरुष स्त्री में आसक्त हो जाता है और स्त्री पुरुष में आसक्त प्राय आपने तो कुछ ग्राम्य गीत तो सुना ही होगा सिनेमा का गीत उसमें प्राय स्त्री पुरुष गाते हैं एक बार स्त्री गा लेती है तो दूसरे बार पुरुष गाता है पुरुष गा लेता है तो फिर स्त्री गाती है ऐसे है ना प्राय है तो ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए सन्यासी और वानप्रस्थी वनचरह मतलब वनप्रस्थ जो वन में रहता है कोई कह रहे भाई कभी हित गनावे विवाह शादी का अवसर हो तो सुन लेना चाहिए अब क्या किया जाए व्यवहार निभाने के लिए तो कहते नहीं नहीं क्वचित कभी भी न सुने किसी भी स्थिति में न सुने समझ गए ना कि टीवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए सन्यासी और वंचर या ब्रह्मचारी कभी नहीं देखना चाहिए और ग्राम्य गीत वास्तव में गृहस्थों को भी नहीं सुनना चाहिए लेकिन क्वचित कभी कभी वो सुन सकते हैं क्योंकि बिना सुने काम नहीं चलेगा कहीं जाएंगे किसी संबंधी के यहाँ विवाह शादी है तो उधर लाउड स्पीकर दहाड़ेगा, तब तक स्त्रियाँ गीत गाने लगेंगी, गाली वगैरह, और दूल्हा को प्रसन्न करने के लिए नाच की भी व्यवस्था होती है, तब क्या करेगा? तो गृहस्थ बाध्य है कभी कभी सुनने के लिए, फिर वो अभी बाध्य होकर के ही सुने। यदि वह स्वतंत्रता फील कर रहा है कि नहीं सुनेगा फिर भी काम चल जाए तो नहीं सुनना चाहिए, ग्रान्य गीत नहीं सुनना चाहिए। क्या हो जाएगा उसको सुनने से? होगा क्या? विनाश होगा, जैसे हरिण का विनाश हो जाता है गीत सुनने के कारण। सीखना चाहिए किस तरह विनाश हो जाता है, बचना चाहिए। हरिणा बद्धा गीत मोहिता, हरिण है गीत मोहित हो जाता है, वन में जा करके बहेलिया गीत गाता है, या गीत गाने वाले को ले जाता है अपने साथ, बहुत सुंदर गीत। और ऐसा हमने सुना है कि गीत गाने वाला जाता है, बाजा बजाने वाला बढ़िया, और बहेलिया पहले से उसका शेयर निश्चित कर देता है कि अगर कोई हरिण आएगा हमारी पकड़ में तो आपको उसमें से इतना देंगे, चलिए गाइए। तो बहेलिया तो प्राय गाना जानते नहीं है, तो गायक को ले जाते हैं, बहुत सुरीले कंठ में किशोर अवस्था के बालक या बालिका बहुत अच्छा गाते हैं, या बाजा बजाने वाला, बांसुरी बजाने वाला तो ले जाते हैं, तो उनके गीत को सुनकर हरिण मोहित हो जाता है। मृगयो गीत मोहित, मृगयु कहते हैं बहेलिया को, बधिक उसके गीत से मोहित हो जाता है हरिण, और जब ही निकट आता है तो जाल लगाए रहता है, उसमें फंस जाता है, चाहे उस पर बाण लगता है, तो इस प्रकार बद्धार्थ गीत सुन करके हरिण बंध जाता है, मारा जाता है। तो ऐसे आपत्ति में, विपद में पड़े हुए हरिण से ये सीखना चाहिए कि सन्यासी और वानप्रस्थी को कभी भूल कर भी ग्राम में गीत नहीं सुनना चाहिए। यह हमें सीखा भगवान कह रहे हैं, हरे भी गुरु है ना, इस तरह विपत्ति में पढ़ करके सिखाया, वो सिखाया क्या, उसको देख करके शिक्षा ले लिए। हरिण की आसक्ति गीत में बहुत होती है। मैं कई बार ऐसा सुना हूँ, जैसे तानसेन के गीत के बारे में, बैजू बाबरा के गीत के बारे में, और हरिदास स्वामी जिन्होंने प्रकट किया है बाकी भी हरि जी को, तो हरिदास स्वामी का शिष्य था तानसेन, बहुत प्रसिद्ध गायक ग्वालियर का। वह गाता था तो हरिण आ जाते थे जो बगीचे में रहते थे आसपास, और ऐसे अपनी माला निकाल करके लोग डाल देते थे उनके गर्दन में, फिर भी सुनते रहते, पोसे हुए नहीं, निकट के दूसरे हरिण आ जाते थे, इतने मोहित होते थे। तो जब हरिण इस तरह गीत पर मोहित होता है तो बांधा जाता है, भूल जाता है कि यह बहेलिया है, हमको बाण मारेगा, हमको बांध कर ले जाएगा, इस बात को पूर्णतः भूल जाता। तो इस प्रकार से गीत का यह असर होता है। तो खास करके सन्यासी को ये डीम डैम तबला हारमोनियम पर गीत नहीं सुनना चाहिए, ग्राम में गीत नहीं सुनना चाहिए। श्रीपद सिंधर स्वामी जी लिखते हैं कि भगवत गीतं तु श्रुणया देव, भगवत गीत सुनना चाहिए, मतलब भगवान के विषय में कुछ गान हो रहा है तो उसे जरूर सुनना चाहिए, वह तो भगवान में प्रेम उत्पन्न करता है, लेकिन ग्राम में गीत नहीं सुनना चाहिए। सिनेमा आदि का गीत है, लौकिक गीत है, और इधर लोग गाते हैं बिरहा लुरखी, ये सब ग्राम में गीत है, और भी नाना प्रकार के राजनीतिक, पहले तो प्रचार करने में भी लोग बहुत बहुत गाते थे, मोहर मरी है भैया, मोहर मरी है, यह करी है वह करी है, लेकिन सरकार ने ठीक किया है कि अब ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी बात संसार के बारे में गाई जाए वह ग्राम्य गीत, विशेष करके स्त्री पुरुष के चित्त को एक दूसरे के प्रति आसक्त करने में जो सहयोग करे उस गीत को तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। भगवत गीत सुनना चाहिए, ग्राम्य विषय समूह सेवन्ते इति ग्राम्य विषय तेसाम गीतम। यह जो ग्राम्य गीत, गीत शब्द नहीं दिया गया है, ग्राम्य दिया गया है, तो विशेष रहस्य व्यावर्त कत्वा भगवत गीतम इति व्याख्यातम। ग्राम्य शब्द दिया गया है गीत के पहले, इसीलिए सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं ग्राम्य गीतम न सुनिया परंतु भगवत गीतम तो सुनिया, केवल भगवत गीत सुनना चाहिए। जैसे महामंत्र हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, बहुत सुंदर बाजा बज रहा है, नृत्य हो रहा है, तो इसमें जरूर भाग लेना चाहिए, तो संसारी गीत नहीं सुनना चाहिए। एक बहुत सुंदर उक्ति लिखे हैं एक टीकाकार, इसमें कहां पर मैं पढ़ा तो छूट गया, कि हरि कहता है जब बहेलिया बाण मारता है हरिण को, तो हरिण उस गीत में इतना आसक्त होता है कि बाण लगने पर वो कहता है कि हे बहेलिया, ठीक है तुमको, तुम उसको मार दिया, लेकिन एक काम करना, तुम कोई बाजा बनाना तो उस पर मेरा चाम महना और मेरे आंत से तात से उस ढोलक को या तबला को मढ़ना, जिससे कि मैं सुनता रहूं उस समय भी गीत मरे हुए चमड़े से। ठीक है मेरा बस कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा चाह में फिर से ढोलक में लगना चाहिए, जो गीत हो रहा था वैसा ही गीत हो। इतनी आसक्ति होती है गीत में, इसे मैं कहीं पढ़ा लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, इस तरह की बात कहा। हरिण का प्रसंग है, इसलिए हरिणी के पुत्र श्रृंगी ऋषि का यहाँ स्मरण हो रहा है, इसलिए भगवान दत्तात्रेय ऋषि श्रृंग को भी गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उनसे जो शिक्षा मिलती है उसको कह रहे हैं। नृत्य वादित्र गीतानि जुसन ग्राम्याणि जोषितान आसाम क्रीडन को वश्य ऋष्य श्रृंगो मृगी सुतः। हरि शब्दात एव हरि सुतः ऋष श्रृंगोपि गुरु ज्ञातव्य क्या नृत्य वश्यो बभुए। ऋषि श्रृंग मृगी सुतः, एक ऋषि श्रृंग नाम के मुनि हो गए हैं, वो मृगी से उत्पन्न हुए थे विभांडक ऋषि द्वारा। विभांडक ऋषि पिता थे और वो एक तपस्वी थे, लेकिन